संतप्त मानस शांत हो, जिनके गुणों के गाने में पढ़ो 110वीं गाथा। पर्याय और गुण द्रव्य के बिना नहीं होते और कभी भी होते नहीं। द्रव्य ही है भाव, इसलिए द्रव्य ही भाव है ऐसा कहकर वो कह रहे हैं। भाव माने सत्ता, इसलिए द्रव्य सत्ता है स्वयं। अभी तक सत्ता द्रव्य से कथन भिन्न है और कथनचित अभिन्न है, ये विभिन्न अपेक्षाओं से ये बात समझाए आए थे। और अब वो कहते हैं द्रव्य सत्ता से अभिन्न है और अंत में कहते हैं कि अभिन्न कहने में भी भिन्नता की भिन्न भिन्नाहट आती है, इसलिए ये अभिन्न है भिन्न है इसकी चर्चा करने से क्या फायदा। द्रव्य सत्ता है स्वयं, द्रव्य स्वयं सत्ता ही है, चाहे द्रव्य कहो और चाहे सत्ता कहो एक ही बात है। क्योंकि जगत में सत्ता के नाम पर यदि कुछ है तो वो द्रव्य ही है। द्रव्यों के अलावा क्या है जगत में, देखो टीका पढ़ते हैं। जिस प्रकार पीलापन और कुंडल आदि सोने से पृथक नहीं होते, सोने को द्रव्य के रूप में लिया, पीलेपन को गुण के रूप में लिया और कुंडल आदि को पर्यायों के रूप में लिया। और ये तो पुरानी बात हो गई, कई दफे उस उदाहरण से आचार्य द्रव्य गुण पर्याय की स्थिति को स्पष्ट करते आए हैं। माने जो आकार की अपेक्षा पर्याय को पकड़ते हैं, कुंडलादि जब कहते हैं ना तो वहां पर वो आकार पकड़ना है, जिसे अपन प्रदेश गुण के विकार को व्यंजन पर्याय कहते हैं अथवा द्रव्य पर्याय कहते हैं वो। और रूप रस गंध स्पर्श ये गुण है ना। वैसे अब सफेद तो एक सुनो रंग नाम का एक गुण है, काला पीला सफेद ये तो उसकी पर्याय है, तो सफेदी को गुण कैसे कह सकते हैं। लेकिन समझ लेना यहाँ कहा है, हमने किसी को कुछ बनाया है समझाने के लिए, तो क्या सोने को द्रव्य और उसमें की जो भी कलर है स्वर्ण क्या इनने क्या लिखा है उसको पीलापन। अब पीला है जो भी स्वर्ण रंग की चीज समझ लो ना, वो जो रंग आप जानते हो सोने के रंग को, वो जो है वो गुण है, वो कुंडलादि है, वो पर्याय है। लेकिन सोना अलग और वो पीलापन अलग, इन दोनों को अलग कर दो तो वे अलग नहीं हो सकता। और कुंडल को भी सोने से अलग कर दो तो नहीं हो सकता। यदि कुंडल और सोना एक ही है तो कुंडल के मिटने पर सोना मिट जाना चाहिए, लेकिन सोना नहीं मिटता है। अब इसकी चर्चा शायद अगली गाथा में करेंगे, 111वीं गाथा में करेंगे। अभी तो सिर्फ इतनी कह रहे कि द्रव्य सत्ता है स्वयं, जो अस्तित्व नाम का गुण है, चाहे सत्ता कहो चाहे द्रव्य कहो चाहे परिणाम कहो, कल परिणाम कहा था ना इसी को, इन सब का एक ही अर्थ है। जिस प्रकार पीलापन और कुंडलादि सोने से पृथक नहीं होते, उसी प्रकार गुण और पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं होती। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला द्रव्यत्व, द्रव्य का भाव नाम से कहा जाने वाले गुण होने से क्या वह अस्तित्व द्रव्य से पृथक होगा? अभी आपको फिर वही अटपटा लग रहा होगा, कुछ नहीं है इसमें। यही भाषा बिल्कुल अपन दो गाथा पहले पढ़ के आए, मिलान करो निकालो। तो वृत्ति वाले बात कर रहा हूं मैं। इसमें जो है ना क्या, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व, ये सब है पिछली गाथाओं में, 109 में है ना, दूसरे पैरा में है। देखो, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व बिल्कुल हूबहू इसमें ही है। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व है, परमात्मा मिला तो क्या कहा था उसने निष्कार, इतनी लंबी का अस्तित्व ही कह देते ना, द्रव्य का अस्तित्व। तो वृत्तिभूत अस्तित्व कहने का अर्थ उत्पाद वे ध्रुव वाला, मान काल संबंधी बात पकड़ना, उत्पाद वे ध्रुव प्रदेश संबंधी नहीं पकड़ना, पर्याय संबंधी पकड़ना, ये बात कही थी। देखो ये वाक्य अभी अपन ने जो पढ़ा था वो जरा आपको अटपटा लगता था, उसे पहले सीधा करते हैं। द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व नाम से कहे जाने वाला द्रव्यत्व, ये तो सिर्फ द्रव्यत्व को उन्होंने परिभाषित किया है कि द्रव्य माने क्या, कि वो वृत्तिभूत जो अस्तित्व है उस सहित, माने उत्पाद वे ध्रुव युक्तम सत, ये द्रव्य। अब अकेला ये इस परिभाषा तो अपन ने समझ ली, तो इसे अलग कर दो। अब ये कहो कि द्रव्य का जो द्रव्यत्व है, द्रव्य के द्रव्यत्व पर बीच की बात हटा दो, द्रव्य का द्रव्यत्व है वो क्या है, द्रव्य का भाव नाम से कहा जाने वाला गुण। भाव नाम से कहा जाता है ना उस गुण को, वो अस्तित्व गुण भी कहते हैं, भाव भी कहते हैं, परिणाम भी कहते हैं, तो बता चुके हैं क्या वह अस्तित्व द्रव्य से पृथक है। अब इतनी सीधी भाषा इतनी सी है, क्या द्रव्यत्व द्रव्य से पृथक होगा, नहीं होगा, समझ रहे, कर सकते हो जो मैंने किया है, माने कर्ता ढूंढो, ढूंढो भी क्या कहना चाहते, मुझे कहते क्या द्रव्यत्व द्रव्य से अलग होगा, नहीं होगा। अब उस द्रव्य को भी परिभाषित करते हैं और फिर उस द्रव्यत्व को भी परिभाषित करते हैं, ख्याल में ना, अब इसलिए वो बात कठिन हो जाती है। और इसी बात को भी दो पिछली गाथा में भी कह आए, फिर भी मतलब इतना ही कह देते तो काम चलता था, लेकिन किसी को कोई भ्रम ना रह जाए, हमें जो बाल बोधनी टीका लिख रहे हैं इसलिए उन्होंने उसकी कंजूसी नहीं की, उसी बात को उन्होंने पूरी तरह से दोहरा दिया। क्या द्रव्य का द्रव्यत्व क्या द्रव्य से पृथक होगा, अब द्रव्यत्व माने अस्तित्व, तो द्रव्य का अस्तित्व क्या द्रव्य से पृथक होगा, मैं हूं, ये जो मैं है और हूं है, तो हूं क्या मैं से पृथक होगा, क्या मैं हूं, तो मैं और हूं समझ गया ना। आप भाषा में तो आप ही जानते हैं कि यदि हमको जरूरत नहीं होती है जगह पद में, तो हम हूं कह करके ही प्रयोग कर देते हैं, हम मैं नहीं लिखते हैं, तो अभी सारे लोग मैं उसके साथ में अपने आप समझ लेते हैं, क्या समझ लेते हैं कि नहीं, कि मैं हूं, मैंने मैं के साथ अस्तित्व जुड़ा हुआ ही है, द्रव्य के साथ उसका अस्तित्व जुड़ा हुआ ही है। जिस प्रकार अब मैं पढ़ता हूँ उसी को द्वारा, जिस प्रकार पीलापन और कुंडलादि सोने से पृथक नहीं होते, उसी प्रकार गुण और पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं होती। सुबह गुरुदेव का प्रवचन आ रहा था और उन्हीं गाथाओं पर आ रहा था जिन पर अपन प्रवचन कर चुके हैं दो चार दिन पहले। कौन सी गाथा थी, किसी ने सुनी, कुछ मालूम है नहीं है? मैं तो सिर्फ इसलिए याद दिला रहा हूँ कि उसमें उस बात को बिल्कुल एक ही भाषा में गुरुदेव ने कितनी बार दोहराया, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। एक घंटे तक शांति जी लगातार दोहराती रहे, 10 दफे हुआ 20 दफे होगा, मैं गिन नहीं पाया क्या। वही बात कहते, देख के कहते, पढ़ते, फिर कहते, फिर देखते, फिर कहते, फिर और खूब रस ले लेके। मेरे कहने का मतलब ये है कि अमृतचंदाचार्य ने यदि वही बात वैसी लिखी है द्वारा, तो उसको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है कि रिपीट क्यों किया। लेकिन हमको अर्थ निकालना आना चाहिए, उस बात को हम जरूरत हो तो समझ लें, नहीं तो हम द्रव्य का द्रव्य तो द्रव्य से पृथक नहीं है। बस इतनी बात है। देखो, जिस प्रकार पीलापन और कुंडलादि सोने से पृथक नहीं होते, उसी प्रकार द्रव्य से द्रव्य पृथक नहीं है। तो पीलापन क्या, पीलापन पीले, पीला को पीलापन, इसमें क्या है, भाववादी बनाया है ना, एक तो प्रत्यय लगाया है, वहां भी लगाया है द्रव्य का द्रव्यत्व। देखो व्याकरण से समझ में आ गया कि नहीं, वो व्याकरण से भी वो बात समझ में आई कि द्रव्य का द्रव्यत्व, पीला पीला का पीलापन, तो पीला पीला तो द्रव्य ही है, सोना है, तो उसे यहां सोना कहा, लेकिन पीले का पीलापन पीले से पृथक नहीं है, ये उदाहरण दिया है। तब तो हमारी समझ में आएगा कि द्रव्य का द्रव्यत्व तो द्रव्य से अलग नहीं है। समझ आ गया कि नहीं? वो छोटी 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 बातें हैं जिन पर हमारा ध्यान हो तो बहुत अच्छी तरीके से सब बात स्पष्ट हो सकती है ना? क्या कहते हो, जिस प्रकार पीलापन और कुंडल आदि सोने से पृथक नहीं होते, अभी तो बहुत स्पष्ट है कि भाई जब सोना खरीदेंगे तो उसमें पीलापन तो आएगा ही और उसमें कोई ना कोई आकार भी आएगा ही, है ना? कुंडल का जो भी जिस आकार पर हम मोहित होंगे और जो हम आकार चाहेंगे वो आकार भी आएगा। उसी प्रकार गुण और पर्याय द्रव्य से पृथक नहीं होते, द्रव्य के स्वरूप का वृत्तिभूत अस्तित्व नाम से कहा जाने वाला द्रव्यत्व। यदि द्रव्य का द्रव्यत्व क्या है, अस्तित्व क्या है, कि जिसको वृत्ति वाला गुण उत्पाद वह ध्रुवयुक्तम सत वाला, वो लेना द्रव्य का भाव नाम से कहा जाने वाला गुण, और द्रव्य का वो भाव नाम से गुण को द्रव्य का भाव कहते हैं, क्या है द्रव्य को क्या कहते हैं, वृत्तिभूत अस्तित्व को द्रव्य कहते हैं और गुण को भाव कहते हैं। कहा जाने वाला गुण होने से क्या वह अस्तित्व द्रव्य से पृथक होगा, नहीं होगा, तो फिर द्रव्य स्वयं ही सत्ता क्यों ना हो। फिर कहते बार बार ऐसा भेद करने से क्या फायदा कि द्रव्य और सत्ता एक ही है, द्रव्य में सत्ता रहती है, द्रव्य की सत्ता है, सत्ता गुण है और द्रव्य गुणी है, इस तरह की बातें करने से क्या फायदा है। द्रव्य सत्ता है स्वयं, द्रव्य स्वयं सत्ता है, इतना ही पर्याप्त है ना? ज्यादा इसमें कुछ कहने को है नहीं। टीका भी खत्म हो गई ना? इस गाथा में सोने का उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि सत्ता गुण और सत द्रव्य में अनन्य ही है, अन्य अन्य नहीं। टिप्पणी भी छोटी है, विगत गाथा में गुण गुणी में अनेकत्व का निषेध कर एकता स्थापित की है। विगत गाथा माने 110वीं गाथा। अब वो यहाँ पर 110 ऊपर लिख दिया ना, तो इसलिए उसका नाम विगत गाथा हो गया। इसके जरा ऊपर लिखते तो वो विगत नहीं होती। कल बताया था मैंने एक नंबर डालने का मतलब, मैंने ऐसा ही नहीं है, वो नंबर वहाँ डाला गया है, बुद्धि पूर्वक डाला गया है और उसका कोई अर्थ है। विगत गाथा में गुणगुणी में अनेकत्व का निषेध कर एकता स्थापित की है। और अब इस गाथा में यह बताते हैं कि द्रव्य के सत उत्पाद और असत उत्पाद में कोई विरोध नहीं है। एक इस गाथा की टीका बहुत लंबी है, लेकिन इसमें भी कुछ नहीं है। मैं समझा देता हूँ अभी 2 मिनट में। क्या देखो क्या कह रहे हैं, सद उत्पाद और असद उत्पाद क्या है? एक ही उत्पाद हुआ तो उसे सत का उत्पाद कहेंगे, असत का उत्पाद कहेंगे। माने वो अभी सोना था ना, तो उस सोने का कुंडल था, अब कड़ा बना दिया, समझ रहे हैं? कुंडल कान में पहना जाता है, कड़ा हाथ में पहना जाता है, सही है ना? तो कुंडल का कड़ा बना दिया, तो ये कह रहे कि जो कड़ा बना वो सत का उत्पाद है कि असत का उत्पाद है? क्या मतलब, प्रश्न क्या है? कहते हैं कि वो कड़ा पहले था या नहीं, पहले था और फिर बना, और एक पहले नहीं था और बना। अभी मुफ्त का झगड़ा है। सुन लिया, सत का उत्पाद सत माने होना, पहले था और फिर वो ही पैदा हुआ, और पहले नहीं था और वो पैदा हुआ। एक माँ के बच्चा हुआ, जन्म हुआ ना बच्चे का, तो वो था तो पैदा हुआ कि नया पैदा हुआ है? तो वो कहें पेट में था, इस हिसाब से वो था, वो ही पैदा हुआ है। और उसी को कहेंगे नहीं कल तक नहीं था। लेकिन ऐसे विचार करो, द्रव्य दृष्टि से विचार करो, तो वो सोना था कुंडल में, और वो ही कड़े रूप, पहले सोने रूप था, वो ही सुनी पहले कुंडल रूप था और वो ही सोना अब कड़े रूप हो गया है, समझ गए ना? इसलिए सत का उत्पाद है। और कहते कड़ा था ही नहीं, और वो सोना वो था कुंडल, तो उसका नाश हुआ और इसका उत्पाद हुआ, तो असत का उत्पाद हुआ है? ये सारा वही है कि ईश्वर ने जगत को बनाया तो सामग्री थी कि नहीं थी, वो यही है ना। बनाया माने क्या? बनाए के 2 अर्थ होते हैं अपने, आता ना कौन सा, वो कौन सी 76वीं गाथा क्या हुए है, प्रवृत्त निर्वृत्त प्राप्त विकार और निर्वृत्त। के काम दुनिया में 3 प्रकार के होते हैं, एक तो हम बनाए, जैसे किसान गेहूं को पैदा करता है तो उसने 4 दाने डाले थे और 100 दाने बनाए, तो 96 तो नए पैदा किए ऐसा कहते हैं, यानी वो रचनात्मक काम हुआ, वो देश के लिए असली काम है, क्योंकि देश को गेहूं की जरूरत है और उसने नए पैदा किए। अब वो गेहूं वैसे ही तो खाए नहीं जाते हैं, तो इसने कंपनी ने जाकर उसकी डबल रोटी बनाई। क्या वो गेहूं को, गेहूं था उसमें कुछ नहीं डाला, पर उसी को पीस के पानी डाल के फिर उसे सेक दिया, तो वो अग्नि में सेका तो पानी निकल गया। अब क्या बचा? अकेला वो गेहूं, तो डबल रोटी में क्या है? अकेला वो गेहूं ही है ना, तो तुमने किया क्या? तो वो जो गेहूं 10 रुपया किलो तुम लाए थे, ये 100 रुपये किलो क्यों बिस्किट बेचने लग गए? मैंने एक दिन बताया था बहुत दिन पहले कि फिरोजाबाद में एक पंच कल्याणक हुआ था, जब ये बड़ी मूर्ति देखी आपने फिरोजाबाद में, तो वो नहीं थी वहां, उसके पहले जो मंदिर बना उसमें जो मूर्ति है बड़ी बड़ी माने होगी 5-6 फुट की, 4-4 फुट की, 4.5 फुट की, संगमरमर की सफेद, उस मूर्ति का पंच कल्याणक था। हमें अशोक नगर में था, तब हम लोग वहां से वहां आए थे। वो एक तो वहां परिषद का अधिवेशन था, तो मैं जानता हूं तुमने सुना है, फिर भी वो दो आदमी ने भी नहीं सुना हो तो उन्हें सुनना चाहिए हो, क्योंकि बहुत जरूरी है वो। तो उन्होंने एक राजेंद्र कुमार उसके अध्यक्ष बने थे नए, पहले साहू जी थे, साहू जी मिटे थे और वो बने थे राजेंद्र कुमार, वे भी उद्योगपति थे कोई। तो उनने अपना जो भाषण दिया था, उस भाषण में क्या बात आई थी कि जैनियों के बच्चों को अब बिजनेस नहीं करना चाहिए, तो क्या नौकरी करना चाहिए कि नहीं, नौकरी भी नहीं करना चाहिए, उन्होंने कहा उद्योग लगाना चाहिए क्या। तो उनने उसके लिए तर्क दिया था कि बिजनेस में तुम बाजार से 5 रुपए में एक चीज लाओ, वो 6 रुपए में बेचो, तो वो सामने वाला कहता है साला ये बनिया 1 रुपया खा गया, जबकि हमको वहां लाने में, पूंजी लगाने में, दुकान का किराया देने में बहुत हिस्सा चला जाएगा ना, वो 1 रुपया भी हमारे हाथ में आने वाला नहीं है। इसलिए उनकी तरफ जनता की निगाह अच्छी नहीं है, कमा नहीं पाएंगे भी, और उद्योग लगाओगे तो उन्होंने उस वक्त उदाहरण दिया था कि हम दो उसमें 2 रुपए किलो आता होगा क्या कपास, कि 2 रुपए किलो का कपास खरीद कर परम सुख की धोती बनाते हैं। परम सुख की धोती जानते हो, उसका बिल्कुल जरा सा वजन होता है, तो 200 रुपए किलो बेचते हैं, यानी कितना 100 गुना। तो 100 गुना करोगे तो भी कोई तुमको ये लुटेरा नहीं कहेगा, क्योंकि उस पर छपाक लगी है, 200 रुपया कीमत लगी है, यदि आप 10 रुपया कमीशन दे दोगे तो खुश और हो जाएगा। हाँ सुन लें, इसलिए धंधा उद्योग करो, व्यापार छोड़ो, समझे ना। ऐसे ही देखिए डॉक्टर है, उसकी फीस लेता है सीधी डायरेक्ट, कि तुम ना 400 रुपया जमा कराओ फिर हमारे पास आना, जो बात होगी नहीं तो बात ही नहीं होगी तुमसे, आप सुने ना। अब वो फ्री में देखे और दवाई, फिर दवाई देवे और उसके 1000 ले लेवे, तो वो इनडायरेक्ट बोलते हैं उसे, वो इनडायरेक्ट जो लगता है उसका इसको पता नहीं चलता। दूसरे से टैक्स में भी ऐसा होता है, एक डायरेक्ट टैक्स, एक इनडायरेक्ट टैक्स, ये क्या इनकम टैक्स, सेल टैक्स सीधा तुमसे लेते हैं, कि तुमने 100 रुपए का माल खरीदा तो 10 रुपए सेल टैक्स के दे दो, तुमने इतनी इनकम करी तो इसका इतना परसेंट हमें दे दो। अपन को नगद अपने हाथ से देना पड़ता, बहुत तकलीफ होती है। अब ये क्या करते हैं कि वहां जब निकले वो कारखाने में से, उन्हीं से 100 रुपए के माल के 200 आप खुद ले लेने, वो 300 का कह दे, 300 का लग के बाजार में आए, वो गवर्नमेंट ने 200 खा गए उसमें टैक्स में। अब उन्होंने देखा अभी 300 का है, 300 में मिला है, हमें नहीं दिखता कि गवर्नमेंट ने टैक्स लिया है, तो उसे बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। तो अपन क्या समझते, गरीबों का कोई टैक्स नहीं है ना, सेल टैक्स है ना, इनकम टैक्स है ना, वे टैक्स नहीं है अभी गरीब, लेकिन वो जो इनडायरेक्ट टैक्स लग रहा हर चीज पे, वो तो उस गरीब पे भी लग रहा है ना, वो गरीब यही कहता मुझे मुझे कोई टैक्स नहीं लगता है, लेकिन ऐसे लग जाता है ना। तो ऐसे ही वस्तु के स्वरूप में भी ये सब बातें हैं, गहराई से उसमें समझने की बात तो वही। वो सोना मरी था ना, अपना सोना क्या हुआ था, कुंडल था और कड़ा बन गया। अब उसको दो दृष्टिकोण है देखने के, कि ये पहले था वही बन गया है कि पहले नहीं था वो बना है। तो उन दोनों दृष्टिकोणों का नाम क्या है, एक द्रव्य दृष्टि एक पर्याय दृष्टि। ये द्रव्य की तरफ से देखेंगे तो था वही बना है, तो कोई गजब नहीं हुआ है उसमें क्या है, और यदि पर्याय की तरफ से देखेंगे तो नहीं था वो बना है, अब इसका नाम है असत का उत्पाद और उसका नाम है सत का उत्पाद। तो इतनी बात इस गाथा में बताई है, समझ में आ गई हो तो काम खत्म। अब इसको न्याय की भाषा में अमृतचंद्राचार्य ने किस तरह प्रस्तुत किया है, अब उस पर अपन को मेहनत करनी है। जिसकी समझ में आ जाए बढ़िया, नहीं आए तो बढ़िया, नहीं आए माने सुविधा विद्यार्थियों को नहीं, बाकी जो 70-80 वर्ष के श्रोता हैं उनके लिए। वैसे देना तो उनको लिए भी नहीं सही है, जब मुझे नहीं मिली सुविधा तो तुम्हें क्यों मिला है? मैंने भी तो उसे मेहनत करी है ना, उसमें सब पढ़ते हैं। मैंने कहा अब कौन सी है 100, हाँ अब इसी को बात को विशेष दृढ़ समझाते हैं, है ना, वो तथाई होगा ऊपर मैं लिखा ना तथाई है, गाथा पढ़ना बाकी। गाथा तो अपने शुरू में पढ़ी थी ना, 10वीं पढ़ी थी, चलो आइए पढ़ो। सरल है बोलो, पूर्वोक्त द्रव्य स्वभाव में नए द्रव्य नए से उत्पाद सत का उत्पाद होता है और पर्याय नए से असत का उत्पाद होता है। बस अब ये जो द्रव्य नए है ये 47 नयों वाला द्रव्य नए नहीं है, उसमें भी दो दो द्रव्य नए हैं। ये द्रव्यार्थिक नए वाला द्रव्य नए है। अब संक्षेप में उसे द्रव्य नए से कह दिया क्योंकि इतनी जगह नहीं थी कि द्रव्यार्थिक नए से कहते। मैंने द्रव्य की तरफ से देखोगे तो उस द्रव्य का तो कभी अभाव होता ही नहीं, तो असत का उत्पाद का सवाल ही खड़ा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि हम बोलते जैसे कि कुंडल का नाश हुआ ना, तो कहते कुंडल ही का नाश हो गया ऐसा लगता है हमें बहुत, लेकिन जब नाश मास में कुछ नहीं हुआ है, बस उसका आकार बदला है और सोना तुम्हारा तुम्हारे ही पास है, तो जो आकार पर मुग्ध हैं, समझिए ना, जिनकी दृष्टि आकार पर है वे तो हाय राम दुनिया भर का अल्लाह गुल्ला कर दे। जिनकी दृष्टि आकार पे नहीं है द्रव्य पर है उन्हें कुछ नहीं होगा। अब देखो इसमें तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इस सोने में कहां होता, हम तो ऐसा कभी देखा नहीं। अब इसी को लो साहब, अपन मनुष्य पर्याय से मर के देव पर्याय में गए, क्यों तो क्या हुआ बोलो, सत का उत्पाद हुआ कि असत का उत्पाद हुआ? देव पर्याय नहीं थी वो पैदा हुई, मनुष्य पर आ गई और कि जीव तो वही का वही है। जो जीव द्रव्य मनुष्य पर्याय रूप में था वो ही मनुष्य पर्याय रूप से व्यय होकर द्रव्य पर्याय के रूप उसमें देव पर्याय के रूप में उत्पन्न हो गया है। मालूम अभी कुछ दिन पहले अपने यहां ये बात आई थी कि द्रव्य तो उत्पन्न नहीं होता है और पर्याय उत्पन्न होती है, कहा था वो समझाया था मैंने, और फिर मैंने ये कहा था मैंने आप लोगों को ये भी समझाया है कि पर्याय क्या उत्पन्न होती है। ये पर्याय तो ये पलट गई, इसका नाम पर्याय है, बस खत्म। जो कुछ हुआ वो तो रूमाल में ही हुआ है ना, अभी पर्याय का क्या करें, ऐसा था तो ऐसा हो गया, इसलिए पर्याय कहां पलटती है, पर्याय रूप में द्रव्य पलटता है, समझ में आया। और वहां उल्टा था इसका निषेध करके, अब यहां फिर वो आ गया, क्यों द्रव्य द्रव्यार्थिक नए से देख रहे हैं ना, तो कहां पलटा, कहां गया, हमारे घर में जितना सोना था उतना सोना अभी नहीं है, बस कदम हमको कोई भी पलटा पलटी कुछ भी हुई नहीं है। तो ऐसा ही अपना भगवान आत्मा तो मौजूद है ना, और वो तो पर्याय पलट रही है। कहने का पर्याय भी तो बहुत बड़ी चीज है, पर्याय भी तो पलट रही है। अरे भाई क्या चीज है वो, तुमने जो कुंडल पहने थे ना तो वे अब बदल के कड़ा बने हैं, तो तुम चिल्ला रहे हो, लेकिन वो कुंडल भी प्रति समय बदल रहे थे, नहीं तो साल भर में पुराने कैसे हो गए। समझ में आए कि नहीं? यानी हमने मनुष्य मर के देव हो गए, सुनना, तो क्या गजब हो गया कि जब हम मनुष्य थे तो ठीक थे। अरे मनुष्य थे तब भी तुम प्रति समय बदल रहे थे, और अब भी बदले ही हो, और क्या हुआ है बोलो? वो पर्याय वाला जो नियम है वो ही लागू हो रहा है ना। मैंने कई दफे तुम लोगों को समझाने की कोशिश की और समाज को भी की कि जो हम मृत्यु है, जो समाधि मरण समझ के संदर्भ में, उसको हमको ऐसा समझ में आना चाहिए जैसे हम प्रति समय बदल रहे हैं मनुष्य में, और बालक से जवान हो गए, जवान से बुढ़े हो गए, ऐसे ही वो बदला है। कोई बड़ा काम नहीं हुआ, वो बड़ा काम होने वाला नहीं है, समझ गए ना। इसलिए कोई विकल्प की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल समाधि मरने के प्रति बिल्कुल सहज हो जाएं, है ना। ऐसा आता है, देखो रवीन्द्रनाथ टैगोर के बारे में आता है कि भाई अपना लिख रहे थे कभी कविता ववता जो भी लिख रहे होंगे, तो इतने में एक सामने वाला एक आदमी आया, हाथ में पिस्तौल लिए, उन्हें स्टैंड अप खड़े हो गए, बंदूक गिर करके, खड़े हो जाओ मैं कह रहा हूं, नहीं तो मैं एक मिनट में गोली छोड़ा दूंगा। तो उन्होंने धीरे से माथा ऊपर किया शांत भाव से, वो कह रहा था खड़ा होता है कि नहीं, मैं अब भी आज गोली से उड़ा दूंगा, कह जरा रुक लिखने लगे लिखने लग गए, तो शांति से वो अपनी कविता वविता वो पूरी करी, तो फिर वो खड़ा रहा। तो बहुत अटपटा लगा क्योंकि ऐसा आज तक उसके साथ हुआ ही नहीं था कि जिसको वो पिस्तौल से उड़ाने के लिए बात करे, पिस्तौल लेके खड़ा हो है? क्या अब वो लिखता रहे आराम से क्यों? और फिर उन्होंने ऊपर गया, बोलो क्या कहना है, उससे फिर उठ के कहते हैं बोलो क्या कहना है, बोले कुछ नहीं कहना था तो पैर पड़ने लगा क्यों? बस मैं उसे समाधि मरण कहना चाहता हूं, क्या कि वो मौत वाली चीज भी सामने आए और हम में कोई अंतर ही नहीं पड़े, समझ गए ना, हमें कोई अंतर ही नहीं पड़े, तो समझना कि हमने वो बात समझी है। फतेहपुर में पंचकल्याणक था और मैं प्रवचन कर रहा था, गुरुदेव भी बराजित पधारे थे, उसमें नहीं थे, मेरे प्रवचन में नहीं थे, हमने फूलचंद जी थे वो बगल में बैठे थे और सब सारी जनता बैठी थी, बाबू भाई थे। इतने में कोई आदमी जयपुर से वहां आया और उसने ये समाचार दिया, क्या कि आपके घर में चोरी हो गई है, ताला माला टूट गया है और सब साफ हो गया है। तो उसने पर्चे पर लिखकर, उसकी अकल की बात बोलता हूं मैं, प्रवचन कर रहा था तो प्रवचन की गद्दी पे मुझे पहुंचा, मुझे कुछ प्रश्न है शंका मंका आई होगी किसी ने की होगी तो मैंने पढ़ा उसे रखकर वह प्रवचन करने लगे फिर मैंने पूरा प्रवचन शांति से किया, किसी को पता नहीं चला कि उस प्रवचन में कोई अंतर नहीं आया, जो विषय में चल रहा था ना तो मेरा उपयोग तो उसमें गहराई से जुड़ा हुआ था। तो प्रवचन करने के बाद वो तो मैंने जेब में रख लिया था पर्चा, फिर लोग मैंने पूछा क्या बात है, क्या बात है, क्या ये बीच में किसने क्या दिया था, क्या कौन आदमी क्या दिया था, मैंने कुछ नहीं, ये ऐसा कह रहे हैं कि हमारे यहां चोरी हो गई। तो चोरी हो गई, आप प्रश्न करते रहे तो क्या करता। तो प्रश्न बंद करके मैं दौड़ के जाके वो चोर को तो पकड़ नहीं सकता था। मैं तो फतेहपुर में बैठा हूं, वो जयपुर में है। अब क्या हो सकता था मुझे बताओ आप है? उस वक्त क्या कर्तव्य था बोलो अशोक जी है? यानी सबसे बढ़िया पोजीशन यही है ना, तो हमारी मृत्यु के बारे में ऐसा ही नहीं है, है? मृत्यु के बारे में ऐसा ही है कि हो गई हो जाएगी, कि चलो आपको मरना है कि ठीक है चलो, कि नहीं नहीं अभी ठहरो रुक जाओ दो दिन के, ठीक है दो दिन बाद चलेंगे। मतलब हमारे प्रति जैसा परिवर्तन हमारा रोजाना हो रहा है, समझ में आया ना, वैसा ही परिवर्तन हमको उस मृत्यु में लगना चाहिए, तो हम समझेंगे कि हमने पर्याय के स्वरूप को सही समझा है। ये घड़ी मड़ी मुझे दिखती नहीं, वो सामने है ना, मुझे लगा दिया तो बिल्कुल नहीं दिखती है। कितना टाइम है अभी, क्या हुआ, आधा घंटा? कि तुम्हें दूसरा काम में देर तो नहीं है इसलिए तुम आधा घंटा कह रहे हो? देखो अपन पढ़ रहे ना एक गाथा, क्या है, ऐसे द्रव्यार्थिक ऐसा द्रव्य द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक नयों के द्वारा स्वभाव से सद्भाव संबद्ध और असद्भाव संबद्ध उत्पाद को सदा प्राप्त करता है। अब ये सद्भाव संबंध असद्भाव संबंध, अब ये भाषा शब्दावली ऐसी हो गई कि इसमें पसीना छूटता है। सीधी सच्ची कह रहे हैं कि वो जो चीज पैदा भई है वे पहला थी कि नहीं थी, बस इतनी सी बात है। वो नहीं थी वो पैदा हुई है कि थी वो पैदा हुआ है? ये जीव तो अनादि का है, वो अनंत काल तक रहेगा और कितने बार पैदा होगा, क्यों कितने बार होगा? अरे जितने तीन काल के समय हैं उतने बार पैदा होगा, समझ रहे हैं कि नहीं? उत्तर वो मेरा, क्योंकि प्रति समय बदलेगी ना इसी पर्याय तो। अरे कभी वैसी बदली जैसे देव मनुष्य देव हो गया, और कभी मनुष्य मनुष्य में बदली, तो बदल तो रही है ना वो पर्याय। तो पर्याय तो वस्तु का स्वभाव है ना, जैसा बदलना वस्तु का स्वभाव है ऐसे ही नहीं बदलना भी वस्तु का स्वभाव है। हमें क्या चिंता, हमारा आत्मा तो नहीं मरेगा, तो आत्मा मरता होता है तो फिर तो चिंता करने की जरूरत थी, क्यों बोलो क्या करना है, फिर तो सोचना पड़ता। अरे भाई वस्तु का स्वरूप जैसा है वैसा ही होता है, और वैसा ही होता तो हमें वैसा स्वीकार होता, समझ में आया कि नहीं आया क्या कह रहा हूं मैं? हमको उसमें भी माथे पे तीन बल लाने की क्या जरूरत थी है? ठीक है क्या कह रहा हूं, बहुत बहुत गड़बड़ मामला है, जरा समझो गंभीरता से। हमें थोड़ा इसको अटपटा बनाता हूं कि साहब आप मर के स्वर्ग में जाएंगे, ठीक है। नहीं 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 मैं भूल गया, तो आपका तो आप तो नरक में जाने वाले हैं, कि ठीक है कि क्या कह रहे, क्यों क्या कह रहे हो कि अब वस्तु का स्वरूप है तुम बता रहे हो, क्यों वो हम जान रहे हैं उसमें क्या है? हो सकता है ना स्वर्ग में भी जा सकते हैं और नरक में भी जा सकते हैं, हम तो वो पढ़ा है ना, समकित सहित नरक को बासा जाना खासा है ना, आधा घनी ने पढ़ा या नहीं पढ़ा? और क्या मतलब है, मेरे कहने का मतलब हमारा बदलना स्वभाव है, उसके अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, और नहीं बदलना जो हमारा स्वभाव है उसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है, तो हम बदल के बिल्कुल बदलने वाले नहीं हैं। आचार्य लोग तो ऐसी बातें, बड़ी बड़ी बातें बहुत सहज भाव से कह देते हैं, मुझे तो बहुत अटपटा लगता है। जीवो ही तावत कृमि नमात्म परमामयी उत्पद्य मानो जीवा एव नो अजीवा। क्या कह रहे कि जीव अपने कृमिनिमित परिणामों से उत्पन्न होता हुआ जीव ही है, अजीव नहीं। अब हम तुमको तुम हमें ये समझाओगे कि जीव जीव है, अजीव नहीं है? क्यों, ये क्या कह रहे? इसमें हमें कोई बड़ी बात नहीं लगती है। वो कहते हैं कि द्रव्य बदलता जरूर है, लेकिन बदल के जीव अजीव नहीं हो जाता, अजीव जीव नहीं होता। अनादिकाल से ये जीव जीव ही है और अनंत काल का जीव तक ही रहेगा। अब बोलो, ये तुमको स्वीकार है? इससे बढ़िया बात और क्या होगी, स्वीकार है। तो ये प्रति समय बदलेगा भी, ये जिएगा तो ये, लेकिन मरमर के जिएगा। क्या समझ में आया? प्रति समय बदल बदल करके नहीं बदलेगा और नहीं बदल करके बदलेगा, ऐसा ही इसका स्वभाव है। अभी तुम्हें स्वीकार है कि नहीं है? नहीं है स्वीकार तो शांति नहीं मिलेगी, इसको स्वीकार होना चाहिए। बदलना भी वैसा ही स्वभाव है शांति जी, जैसा नहीं बदलना, माने वो उन्नीसा नहीं है। मैंने एक जगह लिखा है कई जगह कि जैसा नित्यत्व धर्म है आत्मा में, अनित्यत्व धर्म की भी वही हैसियत है। वो थोड़ा कोई कमजोर हो, हे हो, ऐसा नहीं है। नित्यत्व धर्म के समान अनित्यत्व धर्म है, तो हमारा नहीं बदलने के समान ही बदलने वाला स्वभाव और बदलने के समान ही नहीं बदलने वाला स्वभाव, इन दोनों स्वभावों की एक हैसियत है। ये कह रहे हैं इनमें काय का हर्ष विषाद के निजा, हमें तो होता है, और होता है तो अनंत काल तक होगा तुम्हारे लिए, इसका कोई उपाय नहीं है। उपाय तो यही है कि तुम स्वभाव को स्वीकार कर लो। क्यों, अब मोटी माटी बात कहता हूं कि हमने जितने भी लाखों मनुष्य देखे हैं, सुने हैं, सब पैदा होते हैं, फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं, फिर बालक होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर देह बदल के चले जाते हैं। ऐसा बराबर सहज क्रम इस मनुष्य जाति में हमने अपनी आंखों से देखा है ना। और मोटा मोटा ये भी जानते हैं हम कि जैसे कुत्ते की जिंदगी 20 साल की होती है तो 4 साल में जवान हो जाता है। क्यों, 15-16 साल में बुढ़ा हो जाता है, 20 साल में चल देता है। उसका चक्र 20 साल में पूरा हो जाता है। तो आदमी का 100 साल में समझ लो, कोई भी समझ लो, जितने इतने साल में पूरा होता है। तो मोटा मोटा तो सबका वैसा ही होता है ना, पर ऐसा ही होगा 99%। अब इसमें क्या सोचने की बात है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, थोड़ा ऐसा होता तो अच्छा रहता, एकदम बचपन जरा बाद में आ जाता, पहले सीधी जवानी आ जाती तो ठीक रहता। ठीक है, एक जगह ऐसी है कि बचपन आ गया ही नहीं, बोलो। ठीक है, खुश हो? कौन सी जगह है वो मालूम, नरक। तुम समझ रहे थे सड़क की बात कहेंगे थे। नरक और स्वर्ग ऐसी जगह है कि जहां जन्म से लेकर अब बुढ़ापे तक एक से रहते हैं, ऐसा बालकपन और जवानी और बुढ़ापा, ऐसी तीन अवस्थाएं नहीं होती हैं। तो तुम्हें ये पसंद नहीं है तो तुम्हें मनुष्य होना पसंद नहीं है। और मोक्ष तो मनुष्य से पर्याय से ही होता है, माने तुम्हें मोक्ष जाना पसंद नहीं है, ऐसा अर्थ हुआ ना। यानी वस्तु का स्वभाव हमारी समझ में आना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये है। क्यों, वस्तु का स्वभाव हमारी समझ में आना चाहिए, माने स्वीकृत होना चाहिए। बिल्कुल सहज भाव से हमें ये स्वीकृत होना चाहिए। क्या, कि जो भी हमारे ये संयोगों की स्थिति है वो जैसी समय पर जैसी होती है ऐसी हो जाएगी। ये बाल वो नहीं होते हैं, फिर उगाते हैं, फिर बढ़ जाते हैं, 20 साल तक दाढ़ी मूछ नहीं आती है, फिर दाढ़ी मूछ आने लगती है, क्यों? फिर सिर के बाल पूरे सफेद हो जाते हैं और दाढ़ी मूछ बिल्कुल काली रहती है। ऐसे लोगों को मैंने देखा है, क्यों है ना? दाढ़ी मूछ बिल्कुल सफेद हो जाती है, सिर के बाल काले रहते हैं। जो रहते होंगे हो जाएंगे ना, हमको क्या लेना देना, वो अपने सौकाल के हिसाब से होगा। हमने तो कुछ किया नहीं है ना, हमने तो उन्हें कुछ रंगा नहीं है ना, हम क्यों इससे से जाएं? ये किसने कहा था कि सफेद बाल अच्छे नहीं होते, काले अच्छे होते हैं? अपने तुमने समझ लिया। मैं कहता हूं बुढ़ापे में सफेद ही बाल अच्छे होते हैं, काले अच्छे नहीं लगते। क्यों लगेंगे? 70-80-90 वर्ष का कोई आदमी हो और वो मुंह काला करवा के आते हैं ना बालों को कलर करके। एक दफे सच्ची घटना बताता हूं, नाम नहीं बताऊंगा, एक बहुत मेरे अभिन्न मित्र समझ लो मेरी उम्र के ही बराबर आए, तो एकदम बाल काले थे, समझ गए ना? और काले तो बाल होना नहीं चाहिए थे, तो वो कोई एक्स्ट्रा ही ऑर्डिनरी काले दिख रहे थे। जैसे मतलब आपकी जमाना आप लोगों के है ना, इससे भी कुछ ज्यादा काले ऐसे होते होंगे, ऐसे काले थे। तो बस मैंने कुछ कहा नहीं, बस ऐसी निगाहें मेरी गई, मैंने वो एक शब्द नहीं बोला परमात्मा, लेकिन निगाहें गई। नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा वो जब मैं बाल बनवाने गया था, वो नाइट ने जब जबरदस्ती रंग दिए बजे तो मैंने कहा मैंने क्या कहा मैं तो आज तक कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे अब पता जरूर लगा क्या समझ रहे ना? तो मेरे कहने का मतलब कि उस वक्त में वैसे ही अच्छे लगते हैं, समझ रहे ना? आप जानते हैं ज्यादा होशियार लोग होते हैं वो यदि रंगते भी हैं तो ढंग से रंगते हैं। इंदिरा गांधी के बाल जैसे तुमने देखे हैं ना, वैसे थे नहीं, सफेद ही हो गए थे, लेकिन वो जब काला करवाती थी तो यहां इधर ऐसे कुछ बाल सफेद रखती थी। उन्हीं फोटो वोटो में देखे हुए तो मैंने समझ गया ना कि मतलब सारे तो काले हैं, इतने सफेद रखती थी। क्यों? क्योंकि मतलब मैं कोई काले बाल छिपाने के लिए काले बाल नहीं किए हैं मैंने मैंने मुझे सफेद बाल भी स्वीकृत हैं। आजकल ऐसा ही होता, आप जाओ तो आपके उम्र के हिसाब से बालों का रंग कर देंगे। वो सब रंगने वाले बहुत समझने लग गए और इस तरह के सब मसाले आने लग गए कि वो सफेद भी दिखें, काले भी दिखें, कुछ कुछ काले दिखें, कुछ कुछ सफेद दिखें, क्या है? लेकिन ये सहज जगत की सहज स्वीकृति, बस मुझको ये वस्तु का स्वरूप और हमारे चित्त को स्वीकृत होना चाहिए, इसमें संलेखना का सब कुछ तैयारी हो जाती है। अभी मैं नहीं बताऊंगा, फिर कभी समय सामने बात आएगी। राजुल पूछती है अपने बाप से कि मैं अब दीक्षा लेनी है, उसकी तैयारी क्या करूं, क्यों उपवास की प्रैक्टिस करूं, क्या करूं? तो वो जो तैयारी बताई है मैं कभी बताऊंगा, क्या कि क्या तैयारी करनी चाहिए, क्यों अपन को भी करना हो ना, लेना है ना, तो क्या तैयारी की जानी चाहिए, मेरे में क्या कमी है कि क्या कमी है दीक्षा लेने में, बताओ। शादी तो मैं करूंगी नहीं। कहे बेटा तूने अच्छा निर्णय किया, तू शादी नहीं करेगी, मैं भी तेरे से नहीं कहता, तू शादी कर ले। और कर ले तो कोई खास बात नहीं है, पहली ही होगी वो दूसरी नहीं होगी, समझना। लेकिन नहीं कर तो कोई बात नहीं है, दीक्षा लूंगी। ठीक है ले लेना ले लेना। तो मैं ले लू ना कि अभी तेरे में दीक्षा लेने की योग्यता नहीं है, कि क्या कमी है, क्या कमी है, क्यों पूछती है, बताई दो ना। ये कह रहे परमात्मा बताई दो ना, थोड़ा सा नमूना बताता हूं कि जो तुम दिन भर नमी नमी रखती रहती है ना, ये सबसे बड़ी कमी है बेटा। समझ में आई कि नहीं आई? ये अभी तुम अपने जिनका तेरा पति होने वाले थे उनको नहीं भूल पा रही। ये दिशा लेने के लक्षण है, सपने उनके देखती है, बात उनकी करती है। वे जंगल में ऐसे होंगे, बरसात हो रही है, भीग रहे होंगे, गर्मी लग रही है, उन्हें पसीना आ रहा होगा। अब तो जो उनके पसीना की याद आती है, ये तेरी अयोग्यता है, ये डिस्क्वालिफिकेशन है। क्या तैयारी करनी है? ये देखना कि जब तेरे को 15 दिन तक एक दिन भी याद नहीं आए नैनी, तब मेरे पास आना। समझे? क्या तैयारी करना है अन्ना जी? समझ में आए? तो बिल्कुल पास की तैयारी की बात करेंगे, है? तुमने बिना तो ऐसे ही चलेगा मुड़ के, और ऐसे मैं जाना चाहती हूं तो मैं नहीं जा सकती हूं। नया बिना जा सकते हैं कि हां जा सकते हैं? क्यों जा सकते हैं? क्यों? क्यों उन्हें राजुल याद नहीं आती है। समझ आई ना? वे चले गए, उनसे एक दिन भी एक मिनट भी उन्हें राजुल याद नहीं आई, ना अपने मां बाप याद आए, ना वे सब समझ में आ गया था किसने क्या किया है, तो ना वे शत्रु याद आए। तू ऐसी हो जा, चले जा, फिर तो जन्मजात सम्य दृष्टि थे। मैं कुछ नहीं हूं जन्मजात, आपके यहां पैदा हुई हूं। तू जन्मजात सम्मिथ्या दृष्टि है। क्या कह रहे हमारी राजुल को? समझ में आई अशोक जी? अरे भाई मैं क्या कह रहा हूं, गोमट सार कह रहा है, छेड़ाला कह रहा है। क्या हम दृष्टि जीव मरमर के कहां कहां नहीं जाता? मान भवन सन नारी थावर विकल त्रय पशु में। तो तू नारी है ना, तो जन्म से तो तू संबंध सन पैदा ली गई हुई नहीं थी। के बाद में तो हो सकते हैं, ऐसा भी तो शास्त्र में लगा। अब हम कब कहेंगे तू नहीं है के है? बस जन्म से नहीं थी, इतनी बात तो पक्की है। उनकी होड़ मत कर। क्या कैसी बात करते हो? मेरे वे पति नहीं है तो मंगेतर तो हैं, मेरे मंगेतर नहीं है तो प्रेमी तो हैं। कौन? नैमी। सगाई तो हो गई थी ना, वो सगाई हो जाती है उसे तो उत्तर भारत में मंगेतर कहते हैं, तुम्हारे दक्षिण भारत में क्या कहते हैं? कुछ कहते होंगे ना, है? मंगेतर। तो कहते बेटी ना वे तेरे मंगेतर हैं, ना वे तेरे प्रेमी हैं, ना वे तेरे पति हैं। कैसी बात करते हो? नौ नौ भव से मेरी मामला चला आ रहा है। अब चला आ रहा होगा, मैं बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, लेकिन अभी नहीं है और अब कभी नहीं होंगी, क्योंकि मोक्ष में चले जाएंगे। समझ नहीं क्या कह रहा हूं? है तो तैयारी क्या करूं बता दी ना, ये तैयारी कर। कि मैं तो किन्नारी जाऊंगी, क्या नहीं होगी, तू नहीं ले सकती दीक्षा। शत्रुंजय क्यों नहीं जाएगी? समझ आ रही क्या कह रहा हूं मैं? शत्रुंजय क्या खराब है? छोटा सा पर्वत है, गिन्नार बहुत ऊपर चढ़ना पड़ेगा। कि नेम ही गए हैं भाई, इसलिए तो दीक्षा नहीं ले सकेगी। समझ आए ना? वे चाहे जितने बड़े हों, लेकिन जिस रूप में तू याद करती है उस रूप में याद जब तक आएगी तब तक तू दीक्षा लेने के काबिल नहीं है। बोलो उनके बाप ने क्या बताया कि क्या तैयारी करनी है? आज का कोई बाप ये बताता है? कोई कल्पना करता है तो सोचता है कहीं इनकी दीक्षा लेना चाहते हैं तो क्या की तैयारी, क्या नहीं की है, एक एक करी है कि नहीं करी, क्या बोलो समझ में आते, क्या होना चाहिए समझ में आए ना। दीक्षा तो सबके का नाम है, स्त्री बाल बच्चे पति मां बाप भाई बहन शत्रु मित्र। क्यों दीक्षा लेता है कोई आदमी, मैं ये कहता हूं कि आरिका की लेगा कि साधु की लेगा कि छुल्लक बनेगा कि ऐलक बनेगा क्या बनेगा, कुछ भी बने वो, लेकिन वो सर्व त्याग का नाम दीक्षा है। सारे चेतन संयोग और सारे अचेतन संयोग उसे छोड़ना पड़ेंगे तब दीक्षा होगी, और वे छोड़ना पड़ेंगे मां पाप के उदय से अपने आप ही छूट जाएंगे, पुण्य का उदय होगा तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनका विकल्प तेरे को नहीं आना चाहिए, विकल्प में से छूटना पड़ेंगे। क्या है वस्तु का स्वरूप, वो वस्तु का स्वरूप हमारे दिल में उतरना चाहिए, उतरना चाहिए, ज्ञान में आना चाहिए और श्रद्धा में बिल्कुल जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो होता है वो गलत नहीं होता है, समझ में आए ना, वो बिल्कुल सही है वस्तु का स्वरूप, ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो अच्छा रहता, इसका मतलब तुझे वस्तु का स्वरूप स्वीकार नहीं है, तुम्हें थोड़ा करेक्शन चाहिए उसे उसमें। क्यों होगा वस्तु के स्वरूप में तो कभी कोई करेक्शन होगा नहीं, हो सकता नहीं, और तेरी हमेशा मांग कुछ ना कुछ बनी रहेगी, ख्याल में आई ना, और फिर जाके भगवान ऐसा नहीं ऐसा हो जाए तो अच्छा रहे, तो गया तू दूसरे काम से कैसे, अब तू देव का भी सच्चा स्वरूप नहीं जानता, देव कहते नहीं बदलेगा, तू उसे बदलने की कहता है, बदलने की प्रार्थना पे एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाया जाता है, उनने कह दी कि नहीं वो बदल नहीं सकता है, क्यों है जिंदगी भर मैंने इतनी भक्ति की, मैंने इतनी भक्ति की, मत मर मर कर जितनी करना हो कर, कि नरक में जाना हो क्या कह रहे, नरक में जाना हो घबराना नहीं, नरक कहा निगोद नहीं कहा, क्यों ऐसे ही में उलझा रहेगा और असली मोक्ष मार्ग नहीं अपनाएगा, देव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानेगा तो 2000 सागर में क्यों निगोद ही जाना पड़ेगा ना, महादुख संकट निकट है, कौन सी गाथा 79 देखो 79 महादुख संकट निकट है, नहीं मिली इतनी देर लगाते हो है? 138 पेज देखो भाई उसमें लगा थी कि उनके महादुख पुण्य पाप में शायद वो उसमें है ना, पुण्य पाप में अंतर नहीं है जो न माने बात है, इसकी टीका में है कि महादुख संकट निकट है, इसी में है ना, ये तो 77वीं गाथा है, छोट पापा रम में इसमें इसमें लिखी ना, मैंने 79 में है ना, इसमें गाथा में है ये बात, महादुख संकट निकट है सबके, एक ही बात नहीं की तो समझ लेना, क्या क्या नहीं की पूछ बोल, वो तो जाने दो पुण्य पाप भी कहेंगे, मैं तो ये कहता हूं वस्तु का जो स्वरूप है वो हमें स्वीकृत नहीं हुआ तो, अभी पूरा अपन जाने चाहे नहीं जाने, अधूरा जाने, जितना जाने उतना जाने, लेकिन हमारे चित्त में ये तो नक्की होना चाहिए कि जैसा है उसे स्वीकृत होना चाहिए, उसमें मीन वेक करने का विकल्प नहीं आना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा हो जाता तो क्यों, आप समझे ना कि थोड़ा करेक्शन हो जाए और बाकी तो मुझे स्वीकार, ऐसा नहीं, वस्तु के स्वरूप में करेक्शन की गुंजाइश नहीं है, तीर्थंकर कभी सोचेंगे नहीं, उन्हें कभी विकल्प नहीं आएगा, हम कितनी एप्लीकेशन लगी है, एक एक आदमी ने सारी जिंदगी लगाई और लाखों लोगों ने लगाई, सारा हिंदुस्तान लट रहा है, जैनी सारे जैनी लट रहे हैं। बोलो कितनी एप्लीकेशन लग गई, लेकिन वहां बिल्कुल उनको उनके रोम नहीं फड़का। क्यों? बोलो अशोक जी, कुछ चित्त में थोड़ी तो आई होगी, सुन लो भाई इतने कितने लोग चिल्ला रहे हैं, तो थोड़ा बहुत कर दो। अरे हो ही नहीं सकता है, समझ में आए ना? ये तो तूने भगवान के ऊपर प्रार्थना करी तो तूने भगवान का स्वरूप नहीं जाना। तुम कह रहे भगवान का स्वरूप काय को आ गया, भगवान का स्वरूप काय को, ये करता धरता नहीं कैसे, अरे कैसे नहीं आ गए? भगवान का स्वरूप जानना चाहिए ना, नहीं तुम अभी इसीलिए से लेके पहुंच जाता उनके पास, लिस्ट लेके पहुंच जाता है ना कि ये कर दो ये कर दो ये कर दो। ये समझ लेना ये सारे भिखारी हैं, इनको कभी कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वस्तु स्वरूप बदलने वाला नहीं है। आपको लगता है कि बहुत कड़क बोलते हैं, वस्तु का स्वरूप स्थिति ऐसी है, आप समझे ना, कुछ भी नहीं, क्या किसका डर, किसका क्या करना है, बस चलो।